जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमोनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Thank you. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Radha Madhava Radha Madhava Radhe Nitai Gaura Haribol 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 Nitai Gaura Jaya Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada ki jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Umgyat Virandasya Kyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stabidam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swabadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutabadagamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीमार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसंबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांतद्वांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरतिशै नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोकेषु गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते जयतां शरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधामदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रष्ट्रालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियस्तु नः तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कुन्तिवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाचन्नम् अज्ञादोक्षजमव्ययं न लक्षसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनामलात्मानां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये यथा ऋषिकेशकलेन देवकी कंसेन रुद्धादिचिरं सुचार्पिता विमोचिताहं तचात्मजा विभो त्वयैव नाथे नमुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाय वनवासकृच्छतः मृदे मृदेऽनेकमहारतास्त्रतो द्रोम्यस्त्रतश्चास्महरेरभिरक्षिता विपदा सन्तुता शाश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनं ஜன்மைஸ்வரியுதீபிர்நேதமான நைவாரியத்யவிதாதும் வை த்வாமகிஞ்சன கோச்சரம் நமோகிஞ்சன வித்தாய நிவ்ருத்த குணவிருத்தயே ஆத்மா ராமாய சாந்தாய கைவல்யபதயே நமஹ. மன்யே த்வம் காலமீஷானம் அநாதி நிதனம் விபும் சமம் சரந்தம் சர்வத்ர பூதானாம் யன்மித கலிஹி ந வேத கஷ்சித் பகவான் சிகீர்ஷிதம் தவேஹ மானஸ்ய நிர்ணாம் விடம்பனம் ந யஸ்ய கஷ்சித் தைதோஸ்சி கர்ஹிசித் த்வேஷஸ்ச யஸ்மின் விஷமா மதிர் நிர்ணாம் ஜன்ம கர்ம ச விஸ்வாத்மன் அஜஸ்ய கர்த்துராத்மனஹ திர்யன் ரிஷிஷு யாதுஷு தத்யந்த விடம்பனம் கோப்யா ததே த்வயி கிருதாகசிதாமதாவத் யாதே தசாஸ்ரு சரிலாஞ்சன சம்ப்ரமாக்ஷம் வக்த்ரம் நினிய பயபாவனயா ஸ்திதஸ்ய சாமாம் விமோஹ்யதி விர்யப்யத்தி பேதி கேசிதாஹுரஜம் ஜாதம் புண்ணியஸ்லோகஸ்ய கீர்த்தயே யதோ ப்ரியஸ்யான்வாவயே மலயஸ்யேவ சந்தனம் அபரே வசுதேவஸ்ய தேவக்யாம் யாசிதோப்யகாத் அஜஸ்த்வம் யஸ்ய க்ஷேமாய வதாய ச சுரத்விஷாம் பாராவதாரண்யன்யே புவோ நாவைவோ ததோ சீதந்த்யா பூரி பாரேண ஜாதோ ஹி ஆத்மபுவார்த்திதஹ பவேஸ்மின் க்லிஷ்யமாணானம் அவித்யா காம கர்மபிஹி ஶ்ரவண ஸ்மரணார்ஹாணி கரிஷ்யந்நிதி கேசன ஶ்ருண்வந்தி காயந்தி க்ருணந்த விக்ஷணஶ ஸ்மரந்தி நந்தந்தி தவேஹிதம் ஜனா தயேவ பஶ்யந்த சிரேண தாவகம் பவ ப்ரவாஹோ பரமம் பதாம்புஜம் அத்யப்யனஸ்த்வம் ஸகிருதே ஹித ப்ரபோ ஜிஹாஸதி ஸ்வித்சுருதோ நு ஜீவினஹ ஏஷாம் ந சான்யத் பவத பதாம்புஜாத் பராயணம் ராஜசு யோஜிதாம் ஹசாம் கேவயா நாம ரூபாப்யாம் யதுபிஹி ஸஹ பாண்டவா பவதோ தர்ஷனம் யர்ஹி ரிஷிகானாமிவேஷிதுஹு நேயம் சோபிஷ்யதே தத்ர யதேதானீம் கதாக்ருத்வதைரங்கிதா பாதி ஸ்வலக்ஷண விலக்ஷிதைஹி இமே ஜனபதா ஸ்வத்தா சுகப்கௌஷதீ விருத்தஹ வனாத்ரி நிதன்வந்தோ ஹேதந்தே தவ வீக்ஷிதைஹி அதா விஸ்வேஸ்வவிஸ்வாத்மன் விஸ்வமூர்த்தே ஸ்வகேஷு மே ஸ்நேஹ பாஷமிமம் சிந்தி த்ருடம் பாண்டுஷு விஷ்ணுஷு த்வயி மே அனன்ய விஷயா மதேர்மதுபதே ஸ்வக்ருத் ரதிம் உத்தஹதா தத்தாத் கங்கே வௌத உதன்வதி ஸ்ரீகிருஷ்ண கிருஷ்ண சகா விஷ்ணு விருஷபான வித்ருக் ராஜன்யவம் சதஹநானபவர்க வீர்ய கோவிந்த கோத்விஜ சுரார்த்தி ஹராவதார யோகேஸ்வராய கிள குரோ பகவன் நமஸ்தே யோகேஸ்வராய அகில குரோ பகவன் நமஸ்தே. சர்வசாஸ்திராப்தி பியூஷ சர்வவைதிக சத்வல சர்வசித்தாந்த ரத்நாட்யா சர்வலோகைக த்ரிக் பிரதா சர்வபாகவத பிராண ஸ்ரீமத் பாகவத பிரபோ கலித்வாந்தோதிதாதித்ய ஸ்ரீகிருஷ்ண பரிவர்த்தித பரமானந்த பாட்டாண்ய பிரேமவர்ஷக்ஷராயதே சர்வானந்த சர்வசேவ்யா ஸ்ரீகிருஷ்ணாய நமோஸ்துதே. மதேகபந்தோபத்சங்கின் மத்மனோமாதனா மன்னிஸ்தாரக மத்பாக்யா மதானந்தோ நமோஸ்துதே. அசாது சாது தாதாயின் அதிநீச்சோச்ச தாரகா ಅನಾಮುಂಚಕದಾಚಿನ್ ಮಾಂ ಪ್ರೇಮ್ನಾ ಹೃತ್ಕಂಠಯೋ ಸ್ಪೃಹಾ. ಕಲ್ಲಂ ಕುಂತಿ ಮಾರಣಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾವೋ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ. ಪಹಲೆ ಕಿ ದೋ ಶ್ಲೋಕೋ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಉಪಲಕ್ಷ್ಯ ಮೇ ಹಮ್ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೀ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಾ ಪ್ರಸಂಗ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲಾ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ. ಪ್ರಸಂಗ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೈ, ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೋ ದರ್ಶನ ಕಿಯಾ. ಕ್ಯಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೈ? ಭಗವಾನ್ ಸಾಮನೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೈ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೆ ಸಾಮನೆ, ಔರ್ ವಹಿ ಭಗವಾನ್ ಉತ್ತರಾ ಕೆ ಗರ್ಭ ಮೇ ಪ್ರವೇಶ ಕಿಯೆ ಔರ್ ಉದರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಕೋ ದಮನ್ ಕಿಯಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಕೋ ಜಲಾ ದಿಯಾ. ಯೇ ದೇಖ್ ಕೆ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾ ಜೊ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರೇಮ ಹೈ, ಜೊ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವ ಹೈ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮೇ ಜಬ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಹೋತಾ ಹೈ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹೋತಾ ಹೈ, ವಿಚಲಿತ ಹೋತಾ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಕೋಯಿ ಮಾ ಅಪ್ನಿ ಬಚ್ಚೆ ಕಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೋ ದೇಖ್ತಿ ಹೈ ತೋ ಉನ್ಕೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ, ಕೌನ್ ಹೈ ಯೇ, ಮೇರಾ ಬಚ್ಚಾ ಹೈ ಕಿ ಕೌನ್ ಹೈ ಯೇ. ಹಾಂ, ಮೇರಾ ಬಚ್ಚಾ ತೋ ಸಾಧಾರಣ ಸಬ್ ಐಸೆ ಘೂಮತಾ ಥಾ, ಫಿರ್ತಾ ಥಾ, ಇಧರ್ ಉಧರ್ ಬಾತ್ ಕರ್ತಾ ಥಾ, ಅಬ್ ಇತ್ನಾ ಬಡಾ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ. ಹಾಂ, ಐಸಾ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಭಾವ ಸೆ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಇನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾವೋ ಕೋ ಕರ್ ರಹಿ ಹೈ. ತೋ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಏಕ್ ತೋ ಯೇ ಭಾವ ಹೈ, ದೂಸರಾ ಹೈ ಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಯಾ ಬೋಲಾ ತುರಂತ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಕಾ ದಮನ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ತುನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಅಭಿ ಮೇ ಜಾ ರಹಾ ಹೂನ್. ಅಚಾನಕ್ ಸೆ ಉನ್ಹೊನ್ನೆ ಬೋಲಾ, ಯೇ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಔರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹೋಗಿ, ಔರ್ ವಿಚಲಿತ ಹೋಗಿ, ಅಭಿ ಜಾ ರೇ ಹೋ, ಅಭಿ ಮತ್ ಜಾಓ. ತೋ ಯೇ ವಿರಹ ಕಿ ಭಾವ ಸೆ ಭೀ ಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೀ ಜಾ ರಹೀ ಹೈ. ಯಾನಿ ದೋ ಭಾವೋನ್ ಸೆ, ಏಕ್ ಹೈ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮೇ ಥೋಡಾ ಸಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಿ ಭಾವ ಪ್ರಕಟ ಹೋನೆ ಕಿ ವಜಹ ಸೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮೇ ಜೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ವಜಹ ಸೆ, ದೂಸರಾ ವಿರಹ ಕಿ ಭಾವ ಸೆ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಇನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋ ಕರ್ ರಹೀ ಹೈ. ತೋ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಹಮ್ನೆ ಪಹಲಾ ಶ್ಲೋಕ ಕೆ ಊಪರ್ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ ಥಾ. ಪಹಲಾ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಹತಿ ಹೈ, ನಮಸ್ಯೆ ಪುರುಷಂ ತ್ವಾಧ್ಯಂ ಈಶ್ವರಂ. ಹಮ್ನೆ ನಮಸ್ಯೆ ಶಬ್ದ ಕೋ ಬಹುತ್ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ. ನಮಸ್ಯೆ ಶಬ್ದ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೈ ಶರಣಾಗತಿ ಹೋನಾ, ಯಾ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ನಾ. ಉಸ್ಕೆ ಉಪಲಕ್ಷ್ಯ ಮೇ ಯೇ ನಮಸ್ಯೆ ಶಬ್ದ ಕೋ ಹಮ್ನೆ ತೀನ್ ಸ್ತರ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ. ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲಾ ಸ್ತರ ಯೇ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ, ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಶರಣಾಗತಿ ಕೆ ಬಿನಾ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಹೀ ಕೀ ಜಾ ಸಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ಉಸಿ ಕೋ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಜೊ ಶರಣಾಗತಿ ಕೆ ಭಾವ ಸೆ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೋ. ಕರ್ಮ ಮೇ ಜೊ ಹೈ ಕಾರ್ಯ ಕೆ ಬಾದ ಅರ್ಪಣ ಸಮರ್ಪಣ ಹೋತಾ ಹೈ, ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆ ಬಾದ ಕಾರ್ಯ ಹೋತಾ ಹೈ. ಈ ಅಂತರ ಹೈ ಕರ್ಮ ಮೇ ಔರ್ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಅಂತರ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮೇ ಲೋಕ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಆಪ್ ಪೂರಾ ಕರ್ಮ ಕಿಯಾ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ ಅಂತ ಮೇ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ನಾರಾಯಣಾಯತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಜೊ ಭೀ ಕಾರ್ಯ ಕಿಯಾ, ಜೊ ಭೀ ಕಾರ್ಯ ಕಾ ಫಲ ಹೈ ನಾರಾಯಣ ಕೋ ಸಮರ್ಪಣ ಕಿಯಾ. ಲೇಕಿನ್ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಐಸಾ ನೀ, ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಐಸಾ ಹೈ ಕಿ ಪಹಲೆ ಸಮರ್ಪಣ ಕರೋ, ಬಾದ ಮೇ ಕಾರ್ಯ ಕರೋ, ತಬ್ ವೋ ಕಾರ್ಯೋ ಕೋ ಭಕ್ತಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ತೋ ಯೇ ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಯೇ ಪಹಲಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈ ನಮಸ್ಯೆ ಶಬ್ದ ಕಾ. ತೋ ನಮಸ್ಯೆ ಶಬ್ದ ಕಾ ಹಮ್ನೆ ತೀನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ. ವೈಸೆ ಭಾಗವತ್ ಕಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಕ್ಷರ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಬ್ದ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶ್ಲೋಕ ಯೇ ತೀನ್ ಸ್ತರ ಮೇ ಹೋತಾ ಹೈ. ಏಕ್ ಹೈ ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಜಿಸ್ಕೋ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೈ ಯೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೋ ಹಮಾರೆ ಜೀವನ ಮೇ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ರೂಪ ಮೇ ಕೈಸೆ ಉಸ್ಕೋ ಸಮಝಾ ಜಾಯ್, ಇಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಕಾ ಇಸ್ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಕೈಸೆ ಉಸ್ಕೋ ಲಾಗೂ ಕಿಯಾ ಜಾಯ್. ದುನಿಯಾ ಮೇ ಜೊ ಚೀಜೆ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣ ಸೆ ದೇಖಾ ಜಾಯ್ ಉಸ್ಕೋ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಅಧಿ ಅಧಿಭೂತ, ಅಧಿಭೂತ ಕಾ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಜೊ ಶ್ಲೋಕ ಹೈ ಇಸ್ಕಾ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಕ್ಯಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ. ಯಾನಿ ಯೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಯೇ ಶಬ್ದ ಕಾ ಪ್ರಸಂಗ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕ್ಯಾ ಗಯಾ ಹೈ, ಯೇ ನಮಸ್ಯೆ ಶಬ್ದ ಇದರ್ ಕ್ಯೂ ಆಯಾ ಹೈ ಇಸ್ಕಾ ಚರ್ಚಾ. ನಮಸ್ಯೆ ಶಬ್ದ ಇದರ್ ಕ್ಯೂ ಆಯಾ ಇಸ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ನಮ್ನೆ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ, ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೋ ದೇಖ್ ಕೆ ವೋ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ ರಹೀ. ಅಬ ಮಾನ್ ಲೋ ಕೋಯಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೋ ದೇಖ್ತಾ ಹೈ ತುರಂತ ಉಸ್ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ ಕರೇಗಾ ಹೀ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೋ ಮಹತ್ತಾ ಕೋ ದೇಖ್ ಕೆ. ವೈಸೆ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಜೊ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಪಹಲೆ ಕಭಿ ಪ್ರಣಾಮ ನಹೀ ಕಿಯಾ ಥಾ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಬುವಾ ಹೈ, ಬುವಾ ಥೋಡಿ ನಾ ಭತೀಜೆ ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ ಕರೇಗಿ, ಐಸಾ ಕಭಿ ನಹೀ ಹೋತಿ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಅಭಿ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ ರಹೀ ಹೈ ಕ್ಯೂ, ಭಗವಾನ್ ನೇ ಉನ್ಕೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ದಿಖಾಯಾ. ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೋ ದೇಖ ತುರಂತ ಪ್ರಣಾಮ ಕಿಯಾ. ತೋ ಬಾತ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಜೊ ರಸಮಯ, ಯಾನಿ ಕೃಷ್ಣ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಭಕ್ತೋ ಕಿ ಬೀಚ್ ಮೇ ಜೊ ರಸಾಸ್ವಾದನ್ ಹೋತಾ ಹೈ, ವೋ ರಸಾಸ್ವಾದನ್ ಕೋ ಸಮಝನಾ, ಇಸ್ಕೋ ಅಧಿದೈವ ಕಹಾ ಜಾತಾ. ಯಾನಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣ ಸೆ ಯೇ ಶ್ಲೋಕ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಹೌ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ರಿಲಿಶಿಂಗ್ ದಿಸ್ पास टाइम, कैसे कृष्ण रसास्वादन कर रहे हैं और करा रहे हैं। तो इसलिए हमने ये शब्द सुना नमस्य, कुंती महारानी प्रणाम करती हैं। तो प्रणाम करती है क्यों, कृष्ण को एक तरीके से बता रही है, हे कृष्ण नमस्य पुरुषम। तुरंत कृष्ण सोचने लगे प्रणाम करते ही, हे तू क्या कर रही हो, मेरी बुआ हो ना तुम। तो कुंती महारानी कहती हैं, नहीं मैं तुम्हारी बुआ ज़रूर हूँ, लेकिन तुमको प्रणाम इसलिए किया क्योंकि तुम पुरुष हो। हाँ अच्छा, मैं पुरुष हूँ क्या, इस पर कोई शंका है क्या? नहीं नहीं नहीं, साधारण सा पुरुष नहीं हो तुम, कैसे पुरुष हो, आदि पुरुष हो। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, वैसे तो सभी लोग आदि पुरुष है, क्योंकि शास्त्र में क्या कहा गया है, आत्मा को पुरुष कहा गया है और आत्मा क्या है, आदि भी है, तो तुम भी आदि पुरुष हो, क्यों प्रणाम किया मुझे। तो कृष्ण कहते हैं, तो कुंती महारानी कहती है, नहीं 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 नहीं, तुम ईश्वर हो। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, इंद्र चंद्र इत्यादि बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े ईश्वर है, उस प्रकार का ईश्वर हो। तो कुंती महारानी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम उस प्रकार के नहीं, प्रकृति पराम, प्रकृति से परे हो, इंद्र चंद्र इत्यादि जो देवता है वो प्रकृति के परे है ना आदि है, आप आदि हो, ईश्वर हो और प्रकृति के परे हो। तब कृष्ण का, तो अगर प्रकृति के परे वस्तु ये होता है, हमने सुना है कि शास्त्र में कि वो दिखता है नहीं, है कि नहीं, जो दिव्य चीज है सच्चिदानंद वस्तु दिखाई पड़ता है क्या, हाँ, लेकिन तुम कैसे दिखाई पड़, तुम मुझे देख रहे हो, इसका अर्थ है तुम कुछ गड़बड़ बोल रहे हो, मैं तो प्रकृति से परे ही नहीं हूँ। तो इन्हें कहा, कुंती महारानी ने कहा, नहीं अलक्ष्यम, अलक्ष्यम, प्रकृति के परे हो और साथ साथ में ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा आपको कोई देख नहीं सकता है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, आप अलक्ष्य हो। तो भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया कि आप कहना चाहते हो कि मैं परमात्मा हूँ जो सबके हृदय में निवास करता हूँ। तब कुंती महारानी ने कहा, नहीं अंतर्बहिरवस्थितम, यही मेरा समस्या है, आप अंदर भी हो और बाहर भी हो, बाहर प्रकट हो मेरे सामने और साथ साथ में आप सबके हृदय में भी निवास करते हो, और किस प्रकार हमें अपनी प्रत्यक्ष रूप में अभी मैं देखी कि कैसे आप पुत्रा के घर में प्रवेश किया और उनको परीक्षित महाराज को रक्षा किया, ये मैंने प्रत्यक्ष रूप में देखी है। इसलिए कुंती महारानी पहले श्लोक में तत्व विशेषों को निरूपण करते हुए रसास्वादन भी कर रही है। कुछ लोगों का ऐसा मंतव्य है, तत्व और रस ये दोनों अलग चीज है, ये कभी नहीं है, एक होता है तत्व दूसरा होता है रस, ये दोनों एक दूसरे को पोषण करने वाला है। इन दोनों के बीच में कभी कभी विरोधाभास लग सकता है, विरोधाभास को देखते कुछ लोग तात्विक हो जाते हैं, रस को त्याग कर देते हैं, और कुछ लोग रस को लेते हैं और तत्व को त्याग कर देते हैं, उसमें वो गलत है। तत्व और रस दोनों साथ साथ में जाता है, और जितना आप गहराई से तत्व का दर्शन करेंगे या तत्व का विचार करेंगे उतना अच्छा रसास्वादन होगा। तो इसलिए तत्व विचार करने के लिए हमारे जीवन में सात्विकता की आवश्यकता है, और सात्विकता तभी आएगी जब इन श्लोक से जो हमारे लिए व्यवहारिक उपदेश है हम उसको स्वीकार करके अपने जिएंगे। जब हमारा व्यवहारिक जीवन या भक्तिमय जीवन साधना और दूसरों के भक्तों के साथ व्यवहार अच्छी तरीके से रहेगी, सत्वगुण में स्थित रहेंगे, हमारा तत्व विचार जो है उतना सूक्ष्म रहेगा, जितना तत्व विचार सूक्ष्म रहेगा उतना रसास्वादन अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो इसलिए हमने ये तीन बातों को कहा, एक है आचरण, दूसरा है विचार, तीसरा है रसास्वादन। इन्हीं तीन चीज़ों को अधिदैव अंडरस्टैंडिंग, अधिभूत अंडरस्टैंडिंग एंड अधि आत्म अंडरस्टैंडिंग कहा गया है। अधि आत्म मतलब मेरे साथ या जगत के साथ उसका संबंध क्या है, अधिभूत इसका तत्व क्या है, वास्तविकता में श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है, और इस श्लोक में रसास्वादन क्या हो रहा है, ये तीन स्तर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। भागवत में कहीं भी कोई भी श्लोक खोल के देखिए, उसमें ये तीनों निश्चित रूप में रहेगा। तभी हमने पहला श्लोक को चर्चा किया, और कल हमने दूसरा श्लोक को भी थोड़ा बहुत चर्चा करने का प्रयास किया, थोड़ा हमने जल्दबाजी में किया, थोड़ा उसको विस्तार से चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि कुंती महारानी का जो प्रार्थनाओं में पहले के जो तीन श्लोक है उसके अंदर भगवान का तत्व विचार हुआ है, और आगे की दो श्लोक है उनमें से भगवान का गुण विशेषता, तत्व विशेष पहले तीन श्लोकों में, दूसरे और दो श्लोकों में गुण विशेष का वर्णन हुआ है, भगवान की गुणों का वर्णन हुआ है, और आगे की जो तीन श्लोक हैं भगवान का लीला विशेष का वर्णन हुआ है। तो पहले इधर तक चर्चा करते हैं, नहीं तो सब बता देंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। कम से कम इतना तो याद रखिए कि पहले के तीन श्लोक में तत्व विशेष यानी तत्व विचार, हाँ फिलॉसफी, भगवत तत्व, उसके विषय में नौ बातों को कुंती महारानी कहती हैं, और आगे की दो श्लोक हैं उसमें गुण विशेष भगवान के गुणों का वर्णन है, और आगे की तीन श्लोकों में भगवान की लीला का वर्णन है। अभी कुंती महारानी अपना दूसरे श्लोक में कहती हैं, माया जवनिका चन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्षसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। अभी इतना तत्व का वर्णन करने के बाद कुंती महारानी ने कहा कि वो अज्ञाधोक्षजम न लक्षसे मूढ़दृशा, न लक्षसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, या लोग आपको देख नहीं सकते। जैसे कोई एक ड्रामा में भाग लेता है या ड्रामा करने वाला रहता है, नाटक करने वाला रहता है, उसका यथार्थ को जानना बहुत मुश्किल है या जान नहीं सकता। ऐसे मान लीजिए आप लोग तो ड्रामा में बैठे हैं, तो एक सज्जन व्यक्ति है लेकिन रावण का रोल कर रहा है, लेकिन आप क्या सोचोगे ये जो है कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, हाँ ये रावण जैसा है, इसका स्वभाव ही रावण जैसा, ऐसा सोचने लग जाएंगे ना। वो व्यक्ति कौन है उसका पहचान नहीं हो पाएगा, वो व्यक्ति इस प्रकार क्यों कार्य कर रहा है, कैसे ये ड्रामा कर पा रहा है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं मालूम। इसके वजह से लोग उस व्यक्ति की वास्तविकता को पहचान नहीं पाते। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम में अवतरित होते हैं तो उस समय जो अज्ञ मूर्ख लोग हैं उसको उनको पहचान नहीं पाते। कैसे क्यों नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उनको कृष्ण का तत्व का बारे में विचार या सही विचार नहीं है। वो सोचते हैं भगवान जो है आध्यात्मिक धाम में पूर्ण है, लेकिन जब इस जगत में प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, वो भौतिक गुणों से युक्त प्रकट होते हैं। इसलिए जो अवतारों को वो कहते हैं सगुण ब्रह्मन, सगुण ब्रह्मन, इनके अनुसार क्या है, ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन अवतार जितने भी है, ब्रह्म का जितने भी अवतार है वो क्या है, सगुण ब्रह्मन। ये मायावादी लोग बहुत विचार करते हैं, इस प्रकार कहते हैं, वो कहते हैं सगुण ब्रह्मन को आदर देना चाहिए लेकिन भक्ति नहीं करना चाहिए, हाँ उनसे आध्यात्मिक विचार कुछ रखना नहीं चाहिए, आदर देना चाहिए, क्योंकि वो सात प्रकृति के तीन गुणों के जो सत्व से प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको सगुण ब्रह्मन कहा जाता है। जरूर राम कृष्ण इत्यादि लोगों को आदर देंगे महापुरुष के रूप में, लेकिन वास्तविकता में हमको कौन किसको प्राप्त करना है, राम को कृष्ण को नरसिंह वामन इन लोगों को प्राप्त नहीं करना है, हमारे प्राप्य कौन है, निर्गुण ब्रह्म जो है इनको ही प्राप्त करना है। वैसे लोगों को इधर कहा गया है मूढ़दृशा, उनको मालूम नहीं है जब भगवान इस दादा में प्रकट होते हैं वो कैसे प्रकट होते हैं, अपने सारे जितने भी दिव्यता के साथ प्रकट होते हैं, उनके दिव्यता में जरा सा भी कमी नहीं रहता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, ये मायावादी लोग उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं, मान लो कि एक अमीर व्यक्ति है उसका एक सेवक है, अमीर व्यक्ति का जो सेवक है वो क्या करता है, वो सेवा भी करता है उस अमीर व्यक्ति का, और साथ साथ में आदर भी देता है, लेकिन किसी हालत की वजह से वो अमीर व्यक्ति गरीब हो गया, अमीर व्यक्ति क्या हो गया, वो गरीब हो गया। जब गरीब हो गया तो ये जो सेवक क्या करता है, वो आदर जरूर देता है लेकिन सेवा नहीं करता है। देखिए आदर जरूर देता है लेकिन सेवा नहीं करता है। तो वैसे ही जो परब्रह्म है उसका सेवा करना, उनसे तदाकार होना, उनके भक्ति भाव रखना, सेवा की भाव रखना, ये उचित है, आदर भी रखना उचित है। लेकिन जब वो जो निर्गुण ब्रह्म वो क्या हो जाता है, सगुण ब्रह्म हो जाता है और गरीब हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, आदर जरूर देना चाहिए लेकिन सेवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुणों से युक्त तो हो गया ना ऐसा। तो ये इस प्रकार की अनेकों उदाहरण के द्वारा लोगों को विचलित करते हैं। तो इधर कुंती महारानी वैसे लोगों को लक्ष्य से मूढ़दृशा, जिसकी दृष्टि मूढ़ है, उस प्रकार संबोधित करती हैं। तो कैसे, क्यों मूढ़ हो चुके हैं उनकी दृष्टि, मूढ़ इसलिए हो चुके हैं कि माया जवनिका चन्नम, उनके आंखों के ऊपर क्या है, माया का पर्दा लग गया है। ये माया का पर्दा लगने के वजह से उनका दृष्टि जो है वो मूढ़ दृशा, मूढ़ हो चुका है, फूलिश विजन, फूलिश विजन। जैसे कोई व्यक्ति एक चीज़ को देख रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, देखने पर भी नहीं समझ पाता है, उसको मूर्ख कहा गया है। वो सुनने पर भी समझ नहीं पाता है, उसको मूर्ख कहा जाता है। जो देखने पर सुनने पर दृष्टाश्रुताभ्याम न जानन, दृष्टाश्रुताभ्याम मतलब देखने पर भी और सुनने पर भी जो नहीं समझता है वो मूर्ख है। वैसे तो जो सुनने से समझ जाता है वो सबसे बुद्धिमान है, और देखने से समझता है वो जो है वो थोड़ा कम बुद्धिमान है। लेकिन जो देखने पर भी नहीं समझता है वो महामूर्ख है। सुनने पे नहीं समझता है तो ठीक है, समझा जा सकता है, इतना बुद्धिमंद है। लेकिन देखने पर सुनने पर नहीं समझता है, देखने के बाद भी, इधर देखने का अर्थ है अनुभव करने के बाद भी नहीं समझता है, वो कौन है? महामूर्ख है। इसलिए इधर ये जो मूढ़ा शब्द है उसको महामूर्ख कहा गया है। भगवान ने अपनी दिव्यता को भी प्रकाशित किया है। अभी सारे शास्त्रों में कृष्ण की दिव्यता का वर्णन किया गया है, लेकिन वो पढ़ने के बाद भी ये महामूर्ख लोग रहते हैं, वो समझ नहीं पाते उसको। कुंती महारानी कहते हैं इनकी मूर्खता का कोई हद नहीं है। क्यों? ये भी भगवान आपकी लीला है। आपने क्या किया, माया का जो पर्दा है इतना अद्भुत है, ये माया का कार्य इतना अद्भुत है कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी महामूर्ख के रूप में साबित हो जाते हैं आपके सामने। इसको देख के मैं भी आश्चर्यचकित हो गई हूँ, इवन आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज। आपका जो ये जो लीला है बड़ा आश्चर्यजनक है। इसलिए न लक्ष्य से, ये न लक्ष्य से ये शब्द इस्तेमाल करती है, न लक्ष्य से मैं भी नहीं समझ पाती हूँ आपकी लीला है। इसका अर्थ ये नहीं कि कुंती महारानी ये नहीं कहती है कि मैं भी आपको मूर्खों के जैसा आपको भौतिक जगत के व्यक्ति के रूप में देख रही हूँ। नहीं, ये जो मूर्खों को देख के जो आपकी लीला की दिव्यता को नहीं समझ पाते, ये देख के मैं हैरान हो गई हूँ, मैं आश्चर्य को अनुभव कर रही हूँ। क्यों आश्चर्य को अनुभव कर रही हूँ? क्योंकि ये आपकी जो माया है बड़ा अद्भुत है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, ये शास्त्रों का ज्ञाता भी, इतना सारा शास्त्र जानने के बाद भी आपकी दिव्यता को नहीं पहचानते, इस बात को देख के मैं हैरान हो गई हूँ, मैं विचलित हो चुकी हूँ। क्या है आपकी अद्भुत माया? कुंती महारानी अस्तित्व में भगवान की जो माया है उसका गुणगान कर रही है। भगवान की जो माया दो प्रकार का है, एक माया जो है भक्तों को वो विचलित कर देती है, उसके विषय में उन्होंने कहा मूढ़ दृशा, और वही माया जो है भगवान की भक्तों को भी मोहित कर देती है। कुंती महारानी कहते हैं कि अभी यही माया मुझे भी मोहित कर दिया है। क्या है मोह मेरा? मेरा मोह ये है कि पिछले श्लोक में कुंती महारानी का अंतर बहिरावस्थितम, आप अंदर भी रहते हो बाहर भी रहते हो, कैसे समझ में आता? और दूसरी बात है, आपने प्रतिज्ञा लिया कि मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, लेकिन आपने इधर अस्त्र शस्त्र उठाया। दूसरी बात है, हमने ये देखा कि आप जो है भक्तों की रक्षा करते हो, बहुत सुना है भक्तों की रक्षा करते हो, लेकिन आपने क्या किया, सुभद्रा आपकी बहन है, लेकिन आपने क्या किया, उनका पुत्र को मरवा दिया। पता नहीं, हमने सुना आपने भक्त वत्सल हो, बड़े बड़े बात करते हो, शास्त्र में कहा गया है, आपने वही क्या किया, द्रौपदी के पुत्रों को मरवा दिया। हमने सुना शास्त्र में कि आप जो है बड़े धर्म की रक्षा करने वाले हो, लेकिन वो धर्म की रक्षा करने वाले इतने महान धार्मिक विश्व पितामह को वध करा दिया, और वैसे विश्व पितामह जो महान धार्मिक है उनको कौरवों के पक्ष में डाल दिया। यह सब क्या है? इसको देख के न लक्षते, मैं समझ नहीं पा रही हूं करके कुंती महारानी इस प्रकार वो कहती हैं कि आई एम कंप्लीटली बिविल्डर्ड। तो अगर कोई कृष्ण इन कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को सुना, दूसरी प्रार्थना को सुना, सुन के कहा माया जवनिका चन्नम मचा, तो माया मुझे ढकी है, तो कुंती महारानी कहती है नहीं, माया आपको ढक नहीं सकती है। ये मूर्खों का विचार है कि माया आपको ढकती है, लेकिन माया उनको ढकी है। माया का जवनिका जो है उनके ऊपर है। जैसे उदाहरण दिया गया, कल भी मैं इस बात को कहा था, जैसे कोई बच्चा कहे सूर्य कहाँ है, कोई पूछे बच्चा कहेगा देखो बादल ने सूर्य को ढक दिया है। नहीं, बादल ने सूर्य को नहीं ढका है, बादल ने हमारी आंखों की हमारी दृष्टि को ढका है, जिसकी वजह से हम सूर्य को देख नहीं पा रहे हैं। कुंती महारानी कहती हैं इस बात को अधोक्षजम अव्ययम, अधोक्षजम अव्ययम शब्द के द्वारा कुंती महारानी इस बात को निराकरण कर रही है। कृष्ण का आर्ग्यूमेंट है, अच्छा मैं भी माया से ढका हूं, तो ये प्रश्न का जवाब दे रही है कुंती महारानी कृष्ण का, नहीं आप अधोक्षजम। अधोक्ष शब्द का भी कल व्याख्या किया था, अधोक्ष का अर्थ क्या है, अक्षजम ज्ञानम, अक्षजन ज्ञानम का अर्थ क्या है, इंद्रियों से उत्पन्न हुआ ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान, जिसको हम लोग भगवीता कोर्स में आपका डीवाईएस कोर्स में कहते हैं ना, क्या वो प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, हाँ यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान जो है यस्य यादः, ये इंद्रिय जनित ज्ञान वो हमेशा कृष्ण के नीचे रहता है। अधः मतलब नीचे, नीचे की ओर रहना, जो नीचे वस्तु, नीचे रहने का अर्थ क्या है इधर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीचे रहना, यानी नीचे वाला वस्तु जो है वो ऊपर वाला वस्तु को पकड़ नहीं सकता है। जैसे दूसरे चित्र में कहा गया कोई एक बौना है, एक एक ड्वार्फ है, अगर वो चांद को पकड़ने जाएगा वो नहीं हो पाएगा, इट इज इम्पॉसिबल। उसी प्रकार इधर कुंती महारानी कहते हैं आप अधोक्षज हो, जो लोग इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय जनित ज्ञान के द्वारा आपको जानने का प्रयास करते हैं, वो उस प्रकार का प्रयास है जिस प्रकार एक बौना आपको पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। और तो कृष्ण कह सकते हैं अच्छा ठीक है, मैं इस प्रकार माया के द्वारा मैं ढका नहीं हूँ, लोगों की दृष्टि जो है वो माया का द्वारा ढका हुआ है, इसलिए मैं उनके लिए प्राप्य नहीं हूँ, मैं किसी के लिए प्राप्य नहीं होता हूँ। तो कुंती महारानी कहती है नहीं आप अव्ययम, अव्ययम का अर्थ क्या है, वो आप ये माया भले ही लोगों का दृष्टि को ढका है लेकिन आपको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता उससे। मान लीजिए कोई एक बहुत महंगी वस्तु है, तो एक बहुत महंगी वस्तु को दुकानदार बेच रहा है और जो खरीदने वाला आया है तो उसके पास उसको खरीदने की पैसा नहीं है, तब जो खरीदारी जो है, जो खरीदने के लिए आया है, उसको भी दुख लगता है। क्या दुख लगता है, मैं खरीद नहीं पा रहा हूं, है कि नहीं। जो दुकान में जो रखा है बेचने वाला है उसको भी दुख लगता है, मैं उसको बेच नहीं पाया, यानी दोनों को दुख लगा। तो अगर कोई आर्ग्यूमेंट करे माया का पर्दा जीवों के ऊपर होने के वजह से भगवान का भी प्रभाव होता है, क्योंकि भगवान को कोई भक्ति करने वाला मिलता नहीं है उनको प्रणाम करने वाला कोई मिलता नहीं है, तब कुंती महारानी कहती है आप अव्यय हो, आपको जरा सा भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। माया के प्रभाव की वजह से जीव जो है दुखी होता है, लेकिन भगवान जो है वो अपना 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 दिन में एको देवो नित्य लीनान रखतो, नित्य लीलाओं में हमेशा मग्न रहते हैं। कृष्णा इज कंप्लीटली अनएफेक्टेड बाय माया, नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज नॉट कवर्ड बाय माया, इट इज इवन द लिविंग एंटिटीज, अगर कोई जीव भी माया के प्रभाव से भक्ति नहीं करता है, नुकसान भगवान का नहीं है, किसका है, जीव का नुकसान है। क्योंकि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट करते, कुछ तो कहते देखो हम भक्ति नहीं करेंगे ना भगवान को नुकसान है लेकिन ये मालूम नहीं है भगवान को नुकसान कोई नहीं है, वो एको देवो नित्य लीलान रखते, हमेशा नित्य लीलाओं में मग्न रहते हैं। इसलिए इस बात को कुंती महारानी, जो वेदों की बात है एको देवो नित्य लीलान रखते, उस बात को अव्ययम शब्द के द्वारा वो कुंती महारानी स्थापना कर रही है। तो कुंती महारानी ये दो श्लोकों में नौ तत्वों को विश्लेषण किया, बाद में अभी इस श्लोक में वो कहती हैं क्या ठीक है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ओके आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्या बड़े बड़े परमहंस लोग भी समझ पाते हैं आपको, इसमें भी मेरा डाउट है। कुंती महारानी इस बात को कहती है ठीक है मैं समझ नहीं पाती हूँ, वो अलग बात है, आपका ये जो दिव्य माया का जो मोह है इतना अद्भुत है कि आप इस प्रकार का जो विरोधाभास है, खास करके विरोधाभास के विषय में हमने तीन उदाहरण दिया, एक भगवान ने क्या किया, शस्त्र को उठाऊंगा नहीं, बाद में शस्त्र उठाया, भगवान ने कहा क्या कहा, शास्त्र में क्या कहा गया है, भगवान भक्तवत्सल हैं, लेकिन वही भक्तवत्सल जो है सुभद्रा का पुत्र को मरवाया, वही भक्तवत्सल है द्रौपदी के पुत्रों को मरवाया। धर्मनिष्ठा है भगवान जो है धर्म का रक्षा करते हैं, लेकिन वही धर्म धार्मिक व्यक्ति भीष्म पितामह को वो युद्ध क्षेत्र में मरवाया और वही भीष्म पितामह को कौरवों के पक्ष में डाला। ये जो विरोधाभास है इसके विषय में कुंती महारानी कहती है, क्या परम हंस लोग समझ सकते हैं? ठीक है, मैं मोहित हो गई हूं, परम हंस भी नहीं समझ सकते इसको। दूसरा, जो मुनि लोग हैं वो भी नहीं समझ सकते, जो अमलात्मा होते हैं वो भी नहीं समझ सकते। और ऐसी अगर है तो मैं साधारण सा एक स्त्री हूं तो मैं कैसे समझ सकती हूं? इस बात को तीसरे श्लोक में कहती है। तो भगवत भगवान का जो विरोधाभास है ये शास्त्रों में प्रायः हर जगह प्राप्त होता है। ऐसा कोई श्लोक नहीं है शास्त्र में जिसमें भगवान का ये जो विरोधाभास है उसका वर्णन ना हो। एवरीवेयर ये जो विरोधाभास का वर्णन है, खास करके आप देखते हो दामोदर लीला में। दामोदर लीला में भगवान को क्या कहा गया है? शास्त्रों में कहा गया है वो आप्त काम, सारे कामनाओं से संतृप्त है लेकिन फिर भी उनको भूख लगता है। शास्त्रों में कहा गया है शांताकार मुजग्नेशनम, क्रोध आता है कि नहीं? क्रोध दिखाए ना, नरसिंह के रूप में दिखाए, कृष्ण लीला में दामोदर लीला में क्रोध दिखाया। बाद में शास्त्रों में कहा गया है कृष्ण को कोई पकड़ नहीं सकता, अनेजदेकम जबी हो, जो जितना भी आप पकड़ने के लिए प्रयास करो उतना दूर चले जाएंगे कृष्ण। लेकिन यशोदा मैंने क्या किया, कृष्ण को पकड़ लिया। शास्त्र में कहा गया है कृष्ण जो है वो उनका नाम सुनने मात्र से सभी लोग डर जाते हैं, उनके भय से वायु बहता है, उनके भय से अग्नि जलता है, लेकिन अभी वो भयभीत है। ये सब इसको विरोधाभास कहा गया है, इज नोन एज कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है भगवान का वैभव को बढ़ाने वाला है। अस्तित्व में सारे शास्त्र में कोई भी चीज लिखे, जैसे ईशोपनिषद लिखे तद्देजति तन्नेजति, एक ही लाइन में तद्देजति कहा गया है कि वो चलते हैं, तुरंत क्या कहा गया वो नहीं चलते, ये क्या है? तद्दूरे वो बहुत दूर है, तुरंत क्या कहा गया है तद्वांतिके तब नजदीक में है। ये चीज को कुंती महारानी जब प्रकाशित कर रही है कि इससे मैं मोहित हूं, ये मोह से कोई भी छूट नहीं सकता, परमहंस भी छूट नहीं सकता, मुनि लोग भी नहीं छूट सकते, और अमल आत्म जो अपने आप को पूर्ण तरीके शुद्ध कर चुके हैं वो भी इस विरोधाभास को नहीं समझ सकते। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर अपने तत्व सूत्रों में जो पहला वर्ग है उसके अंदर आखिरी श्लोक में लिखते हैं, आखिरी सूत्र में लिखते हैं विरुद्ध सामान्यम तस्मिन्न चित्रम, विरुद्ध सामान्यम तस्मिन्न चित्रम। भगवान के अंदर ये जो विरोधाभास है ये उनके विरोधाभास होना उनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उनका स्वभाव है। कृष्ण का स्वभाव है इन विरोधाभास विरोधात्मक स्वभावों को प्रकाशित करना, इट इज बाई नेचर। बाई नेचर कृष्णा मैनिफेस्ट कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज बाई नेचर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान का स्वभाव है। इट इज बाई नेचर कृष्णा बिविल्डर्स एवरीवन। कृष्ण जो है वो भौतिक जगत में सभी लोगों को माया के द्वारा मोहित करते हैं, जिसको उसको हम जो महामाया कहते हैं, और वही माया जो है जब योग माया के रूप में क्या होता है भगवान के सारे भक्तों को मोहित करती है। इसलिए कुंती महारानी अपनी नम्रता को व्यक्त करती है, हे कृष्ण आपका ये जो दिव्य लीला है इतना अद्भुत है कि मैं मोहित हो चुकी हूँ। जैसे सबसे पहला वो इस श्लोक में कहती है तथा मतलब जिस प्रकार परमहंसानाम मुमिनाम अमलात्मनाम भक्तियोग विधानार्थम कथम पश्येमही स्त्रियः, मैं एक तो एक साधारण सी स्त्री हूँ, क्या परमहंस भी मुनि भी अमलात्मा नाम, ये तीन प्रकार के वर्ग है। सबसे पहला है परमहंस। परमहंस वो है जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। मुनि नाम वो है जो मुक्त हो चुके हैं। अमलात्मा नाम जो शुद्ध हो चुके हैं। यानी ये जो आध्यात्म के स्तर में तीन प्रकार के लोग होते हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान के उपासक। जो भगवान के उपासक है, यानी उपासक मतलब ब्रह्म भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, उनको परमहंस कहा गया है। जो मुनि नाम मुनि लोग क्या करते हैं, परमात्मा के विचार करते हैं, योग के द्वारा परमात्मा को विचार करते हैं। और तीसरा है जो ब्रह्म के ऊपर उपासक है, जो ज्ञान के द्वारा अपनी मन को शुद्ध कर चुके, उसको अमलात्मा नाम कहा गया है। ये तीनों प्रकार के लोग, परमहंसा नाम, मुनि नाम, अमलात्मा नाम, तीनों प्रकार के लोग भी मोहित हो जाते हैं। और भक्ति योग विधानार्थम, हे भगवान आप प्रकट होते हो, आप प्रकट होकर क्या करते हो, आप उन लोगों को शिक्षा प्रदान करते हो, अमलात्मा नाम, मुनि नाम और परमहंसा नाम। तो कैसे हम देखते हैं अमलात्मा नाम, अमलात्मा नाम को भगवान कैसे उन्होंने शिक्षा प्रदान किया, उसका भागवत प्रमाण है। भागवत प्रमाण है कि अमलात्मा नाम पूर्ण तरीके से शुद्ध हो चुके हैं ब्रह्म के प्रति उनके लीनते, वो कौन से, चार कुमार और सुखदेव गोस्वामी। केवल भगवान प्रकट होके उनके उनको आकर्षित किया, उनको भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग के विधान को सिखाया। मुनि नाम, बड़े बड़े मुनि हैं, मैत्रेय इत्यादि जैसे मुनि हैं, उनको भागवत में हम देखते हैं कि वो उनको भी कृष्ण का प्रति आकर्षण हुआ, कृष्ण का लीला उनको वर्णन करते हुए, कर्दम इत्यादि मुनि, बड़े बड़े मुनि हैं, मैत्रेय मुनि, कर्दम मुनि, सब बड़े बड़े मुनि हैं जो कृष्ण प्रेम पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं कर चुके थे, परमात्मा में ज़्यादा ज्ञान था, योग का अभ्यास किया था, कृष्ण तत्व को थोड़ा बहुत जानते थे, वैसे लोगों को भी भक्ति योग विधानार्थम, भक्तियों के विधान को सिखाया। परमहंसा नाम, जो एकदम बिल्कुल शुद्ध भक्ति के स्तर में है, जैसे नारद जी है, वैसे महान महान जो प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, अनेकों अनेकों महान भक्तों की वर्णन भागवतम में है, पुराणों में है, उनको भी आप प्रकट होके इनको ऐसे ऐसी लीलाएं करके उनको उद्धार करते हो। यानी कुंती महारानी कहते हैं, हे भगवान आपका ये जो प्राकट्य है, आप इस प्रकार प्रकट होकर अनेकों लीलाओं को संपन्न करते हो, इसके द्वारा सभी लोगों का भक्ति पोषण होता है, सभी लोगों का भक्ति पोषण होता है। कौन है, परमहंसा नाम, मुनि नाम, अलात्मा नाम। जब ये भी आपके विषय में जान नहीं पाते, मैं तो साधारण स्त्री हूं, जब तत्व विचार किया जाता है ना, भगवान का महिमा को गाया जाता है, उस समय स्वाभाविक तरीके से हमारे हृदय में नम्रता प्रकट होती है। कुंती महारानी अपनी नम्रता को व्यक्त करी, हार मान गई। अस्तित्व में कृष्ण का तत्व का निरूपण पिछले श्लोकों में बहुत बड़ी बड़ी बातों में किया है कि नहीं, प्रकृति पराम अलक्ष्यम शब्दों के द्वारा, अंतर बहिरवस्थितम, बड़े बड़े, ये साधारण से शब्द नहीं है। एक स्त्री इस प्रकार का बोलना ठीक, वो साधारण ही मानी जाती है, क्योंकि स्त्रियों में थोड़ा सा तत्व विचार कम रहता है। कुंती महारानी इतने महान तत्व विचार कर रही है, भगवान की इतना महिमा गुणगान किया, करने के बाद एंड रिजल्ट क्या था, नम्रता। एंड रिजल्ट क्या है, ह्यूमिलिटी। खत्म पश्येम ही स्त्रियः, मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूं, मैं दीन हूं, इस प्रकार कुंती महारानी अपने आप को प्रस्तुत करती है, दीनकता को व्यक्त करती है। मैंने बहुत अपना बुद्धि चलाने के लिए प्रयास किए पिछले दो श्लोकों में, अभी मेरे से और नहीं होने वाला है, आप ही मेरे पर कृपा बरसाइए, ये दीनता को अनुभव किया। ये देखिए, भगवान की गुणों का वर्णन करने का इमीडिएट रिजल्ट क्या है, इमीडिएट रिजल्ट है हमारे हृदय में नम्रता का प्राकट्य। ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफाइंग कृष्णा। हमको क्यों बोला जाता है शास्त्रों में, क्यों कहते हैं भगवान का गुणगान करो, भगवान का गुणगान करते करते भगवान की महिमा जब हृदय में प्रकट होता है, स्वाभाविक तरीके से अपने आप को अपने आप में दीनता आती है। नेचुरल रिजल्ट ऑफ ग्लोरीफाइंग कृष्णा इज ह्यूमिलिटी। जैसे नम्रता प्रकट हुआ हृदय में, जैसे दीनता प्रकट हुआ हृदय में, तुरंत कृष्ण निश्चित रूप में प्रेम प्रदान करते हैं, प्रेम का उदय होता है। जब प्रेम का उदय होता है, उस समय भक्त क्या हो जाता है, उनके पास और कोई चारा नहीं रहता है, तत्विचार वो शास्त्र में कहा, ये शास्त्र में कहा है, हमको ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार करना चाहिए, सारे नियम कानून, सारे तत्व विचार जो है वो सब कुछ प्रेम के सागर में डूब जाता है और एक ही चारा रह जाता है, वो है नाम संकीर्तन। इसलिए कुंती वाणी अगले श्लोक में क्या करती है, श्लोक के अगले श्लोक क्या है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये क्या है, ये श्लोक क्या है, नाम संकीर्तन है। अब देखिए पूरा ये जो श्लोकों का जो वर्णन है इसके अंदर बहुत सुंदर प्रोग्रेशन है। सबसे पहला कुंती महारानी के पहले के दो श्लोकों में तत्व का निरूपण हुआ, तीसरे श्लोक में वो ये वास्तविक जो तत्व है वो वर्णन किया कि परमहंस लोग भी मुनि लोग भी आपको जान नहीं सकते, अमलात्मा भी जान नहीं सकते, अगर वैसी बात है तो मैं कौन हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं इतना तुच्छ हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, और चल पड़ी बड़ा तत्व का वर्णन करने, प्रवचन देने चल पड़ी, मैं इतनी मेरी मूर्खता है, मेरी मूर्खता है कि मैं आपका वर्णन करने चल पड़ी, मैं सोची अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी शब्दों के द्वारा आपको आपको वर्णन कर दूं, ये नहीं होने वाला है, मैं तो साधारण सी स्त्री हूं। ऐसे जाके कुंती महारानी बैठ गई। तो जैसे दीनता आई, और दीनता क्यों आई, महिमा का वर्णन करने से, और जैसे महिमा का वर्णन करने से दीनता प्रकट हुई, वैसे दैन्य भावना प्रकट हुई, तो भगवान क्या किया, कंपल्सरी जैसे जैसे भक्त के हृदय में दीनता का विकास होता है वैसे वैसे साइमल्टेनियसली भगवान उनके हृदय को प्रेम में डुबा देंगे। और जैसे हृदय में प्रेम प्रकट होता है उस समय बाकी सब उस प्रेम के सागर में डूब जाता है। क्या है, सारे शास्त्र प्रेम के सागर में डूब जाता है, सारे नियम कानून, हमको वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, और भगवान वो है, ये है, सारे चीज उस प्रेम के सागर में डूब जाता है, यानी दिखता नहीं है, और एक ही सहारा रहता है उस समय। क्या सहारा रहता है, नाम संकीर्तन। ये है नाम संकीर्तन का महिमा। कुछ लोग बोलते हैं नाम जो है साधन है प्रेम का, नहीं, प्रेम प्राप्त करने के बाद जो एकमात्र साधन बच जाता है वो है महिमा, राम नाम संकीर्तन का महिमा। कुछ लोग बोलते हैं ना नाम जप करो शांति मिलेगी ये तो अस्तित्व इंसल्ट है नाम के लिए। अगर कोई कहे नाम जप करो मुक्त हो जाओगे, ये भी एक प्रकार का इंसल्ट है, अपमान है नाम की महिमा के प्रति। अगर कोई कहे नाम जप करने से प्रेम मिलता है, ये थोड़ा उचित है लेकिन पूर्ण महिमा नहीं है राम संकीर्तन का। भगवान का नाम संकीर्तन जो हम लोग सुबह जप करते हैं उसकी महिमा ये है, जो प्रेम में डूब जाता है व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास और कोई विचार नहीं रहता, उसको खाली नाम संकीर्तन का ही विचार रहता है और कुछ नहीं रहता है, और कोई साधन नहीं बोल सकते उसको कि साधन मतलब भी कोई प्राप्त करने के लिए, प्राप्य साधना के द्वारा साध्य प्राप्त करने के बाद की स्तर है नाम संकीर्तन। ये नाम की वास्तविक महिमा है, दैट इज द ग्लोरी ऑफ द होली नेम। हाँ, इसलिए कोई कहे को नाम से मुक्ति मिलता है, नाम से शांति मिलता है, नाम से वो मिलता है, ये सब चीज़ें इट इज़ ए इंसल्ट द होली नेम। इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु जो चीज़ हमको दिया है ना, ये समझना चाहिए हाउ ग्रेट इज दिस हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण का नाम, नाम संकीर्तन इतना महान है। तो कुंती महारानी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अभी ने पहले कहा था कि ये श्लोक और आगे वाले श्लोक में कृष्ण का गुणों का वर्णन है। आप बोलोगे गुणों का वर्णन है तो, लेकिन नाम संकीर्तन इधर है, भगवान का नाम जो है गुणों के ऊपर आधारित है। कृष्णाया, ये शब्द के द्वारा कुंती महारानी क्या कह रहे, कुंती महारानी ये शब्द के द्वारा कृष्णाया, ये शब्द के द्वारा ये सूचित कर रही है, हे कृष्ण, कृष्णाया, कृष्णाया, हे कृष्ण, सीधा नाम से पुकार रही है। अभी बड़ा आदर की भावना थी, नमस्ते पुरुषम, लेकिन अभी सीधा नाम से पुकार रही है। इसका मतलब है जो उनके कुंती महारानी का जो वात्सल्य भाव था, जो डिस्टर्ब हो गया था किसके वजह से, ऐश्वर्य से, अभी थोड़ा सा शांत हो, तब वापस सीधा उंगली दिखा के बोले कृष्णा है, तुम कृष्ण हो, बाकी सब छोड़ो, यू आर माई कृष्णा। वल्लभाचार्य कहते हैं कृष्णाय शब्द के द्वारा कुंती महारानी सीधा पुकार रही है, तुम मेरे भतीजे हो, क्योंकि एक रेस्पेक्टेबल व्यक्ति को नाम से संबोधित करना ये ठीक नहीं है, सीधा नाम से संबोधित करना वो ठीक नहीं है। इधर सीधा कुंती महारानी कहते हैं कृष्णाय, यू आर माय कृष्णा, मेरे तुम्हारे कृष्ण हो ना, और कृष्ण हो, यू आर कृष्ण, लेकिन कैसे कृष्ण हो तुम, क्यों प्रकट होते हो? भक्तों को केवल आनंद देने के लिए प्रकट होते हो, और आनंद कैसे मिलता है? नाम संकीर्तन के द्वारा मिलता है। यानी हे भगवान, आपका जो परम गुण है कि है लोगों को आनंद प्रदान करना, इट इज योर हाइएस्ट क्वालिटी इज टू गिव ब्लिस टू एवरीवन। जैसे आपने किसको आनंद प्रदान किया? वसुदेव को आनंद प्रदान किया, इसलिए आपका नाम क्या है? वासुदेवाया। वसुदेव को आपने आनंद प्रदान किया। वसुदेव अस्तित्व में वो कंस के द्वारा बहुत पीड़ित थे, उनको आनंद प्रदान करने के लिए आप प्रकट हुए, लेकिन जैसे कंस को मालूम पड़ा कि आप प्रकट होने वाले हो, 6 पुत्र उनके सामने मारे गए, जरा सा भी उनको दुख नहीं लगा। कुंती महारानी इस बात को कहती है, भगवान आपका जो आनंद इतना महान है, आपका प्राकृति का आनंद इतना महान है, इस संसार को, इन संसार में अगर कोई सबसे बड़ा दुख अगर होगा ना, पुत्र को खोने का दुख है। पुत्र का जो शोक है ना, उससे बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता है। खास करके माता पिता अगर उनके बच्चा जन्म लेते या कुछ समय के बचपन ही मर जाए, उससे बढ़कर कोई दुख हो सकता है? कोई घर चला गया या कुछ खो गया, बीमार पड़े, वो उन ये पुत्र शोक से बढ़कर कोई दुख नहीं है। लेकिन वसुदेव देवकी के सामने 6 पुत्रों को कंस ने मारा, लेकिन वसुदेव और देवकी एकदम बिल्कुल आनंद में थे। ये कृष्ण प्राकृति का, ये कृष्ण भावना का आनंद इतना महान है। भौतिक जगत का इतना महान दुख भी हमको प्रभावित नहीं कर सकता। भगवीता में भगवान कहते हैं, यम लद्वान आपरम लाभम मन्यते अधिकं तथा गुरुनपि न विचाल्यते। संसार के भयानक दुख भी, भयानक से भयानक सा दुख भी अगर आए तो भक्त विचलित नहीं होता है। क्यों विचलित नहीं होता है? क्योंकि उनका कृष्ण भावना, कृष्ण का प्राकट्य होगा, कृष्ण भक्ति प्रकट होगा, मुझे कृष्ण मेरे मुझे प्राप्त होंगे, खाली मुझे कृष्ण प्राप्त होंगे, ये आशा मात्र ही इतना महान है। देखिए, इट इज सच ए ग्रेट थिंग, मुझे कृष्ण प्राप्त होंगे ये आशा मात्र ही काफी है। प्राप्त नहीं हुए वसुदेव को भी, वो प्राप्त होंगे इतना आशा मात्र इतना महान है कि संसार से भयानक से भयानक से दुख से मुक्त हो सकता है व्यक्ति। तो कुंती महारानी कहती, ये आपकी महिमा है, आपका गुण है, भक्तों को आनंद देते हो। बाद में उन्होंने कहा, वसुदेव को तो आनंद आपने दिया, लेकिन उससे बढ़कर आनंद आपने किसको दिया? देवकी को दिया। आपने वसुदेव के सामने प्रकट हुए, लेकिन देवकी ने आपको उनके गर्भ में धारण किया। जैसे माँ हमेशा श्रेष्ठ होती है पिता से, हमेशा, कोई भी कहीं भी दुनिया में कोई भी कोने में जाइए, बच्चा जन्म लेते हैं माँ करके बोलता है, बाप करके नहीं बोलते, पिता नहीं बोलता है, पापा नहीं बोलता है, माँ ही बोलता है कि नहीं? उसको माँ शब्द सिखाने की आवश्यकता नहीं होता है, वो पापा करके सिखाना पड़ता है। माँ बोलते, देखो पापा आए, मामा आए, चाचा आए, बोलना पड़ता है। लेकिन ये जो माँ करके पुकारना, कोई सिखाता नहीं उस बच्चे को, तो इसलिए माता का सौभाग्य ज्यादा है। इसलिए कहती है कुंती महारानी कि देवकी नंदनायचा, देवकी के नंदन हुआ। वैसे वसुदेव वासुदेवाय शब्द के ऊपर अनेकों 2-3 व्याख्याओं मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा लंबा छड़ा हो जाएगा। देवकी नंदनायचा, देवकी को आपने आनंद प्रदान किया, इतना आनंद प्रदान किया कि माँ को तो दुख होता ही है कि बच्चे मर गए करके, लेकिन आप प्रकट हो रहे हो ये आशा के साथ देवकी वो जी रही थी। लेकिन आप देवकी के गर्भ में जब प्रवेश किए, आप सबको मालूम है भागवतम के 10वें स्कंद के शुरुआत में इतना सुंदर वर्णन है कि देवकी जैसे कृष्ण उनके गर्भ में प्रवेश किए तो पूरा जल प्रज्वलित हो रहा था, देवकी के शरीर से इतना तेज प्रकट हो रहा था, अस्तित्व में आनंद का तेज प्रकट हो रहा था। तो इसलिए देवकी ज्यादा सौभाग्यवान है, क्योंकि देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। लेकिन उससे बड़ा सौभाग्य किसका है? नंद गोप कुमार आया। नंद गोप, नंद महाराज का सौभाग्य ज्यादा है। क्यों नंद महाराज का सौभाग्य ज्यादा है? क्योंकि भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, उनको नंद महाराज देख पाए। वैसे देवकी और वसुदेव भगवान की बाल लीला को देख नहीं पाए, जन्म की लीला का अनुभव तो किया, हमने बच्चे को जन्म लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद जो बच्चे के साथ जो आदान प्रदान होता है उसकी मधुरमयता जो है वो कुछ विशेष ही है। अगर वो आस्वादन नहीं किया, काय का माता पिता, किसके प्रकार का माता पिता, जैसे बच्चा जन्म लेते ही बच्चे को वो क्रश में डाल दिया, कोई इसमें डाल दिया, नर्सरी में डाल दिया, वो काम करने चले गए, हॉस्टल में डाल दिया, माता पिता को खाली बच्चे पैदा करने का दुख मात्र है। लेकिन बच्चे का सुख तभी है जब वो आजू बाजू उनको खेलता है, वो जो बातें करता है, वो सब चीज़ें देवकी और वसुदेव को नहीं मिला। इससे कुंती महारानी कहती है उससे बड़ा सौभाग्य किसका है, नंद गोपा नंद महाराज को। नंद गोप कुमाराय, अभी कुंती महारानी कहती हैं नंद गोप से ज्यादा आनंद यशोदा को मिला, जिसका वर्णन आगे कहने वाली है। अभी अभी उनको यशोदा नंदन करके पुकारा नहीं, क्योंकि आगे एक श्लोक आता है गोप्या ददे कृतागस दामतावत, उसमें उनकी यशोदा की महिमा कहती है। नंद महाराज से ज्यादा सौभाग्य किसका है, यशोदा मई का है। वैसे जो गोविंदाय नमो, गोविंदाय शब्द के द्वारा कृष्ण कुंती महारानी कहती हैं हे कृष्ण आपका ये जो लीला है, वात्सल लीला का तो वर्णन किए लेकिन माधुर लीला को मैं खुलेआम व्यक्त नहीं करूँगी, बुआ हूँ ना। जैसे कोई बच्चे का कोई लड़का होता है ना 17-18 साल, किसी लड़की से प्रेम होता है ना, माता पिता को तो कह ही नहीं सकता है कि नहीं, वो तो डांट पड़ेगी, ऐसा ठीक नहीं ना, वो उचित नहीं है, हो नहीं सकता, लेकिन बुआ को जरूर कहता है। और वो छुपा के रखती है बुआ उसको, ये बात छुपा के रखती है, खाली उसको प्रोत्साहन भी देती है, लेकिन माता पिता ना प्रोत्साहन देते हैं ना वो कहने का हिम्मत नहीं है माता पिता के सामने। इसलिए कुछ ऐसी चीजें जो माता पिता को भी नहीं कह सकता है जो बच्चा जो लड़का, वो बुआ को कहता है। अभी बुआ कहती है तुम्हारी बातें मैं सब जानती हूँ कुंती महारानी, गोविंदाय। गोविंदाय का अर्थ क्या है, गोविंद, गोविंद का अर्थ है अस्तित्व में भगवान का, गोविंद क्यों नाम कब पड़ा, हाँ गोवर्धन धारण किया, उसके बाद जब सुरभि गाय ने उनको अभिषेक किया और ऐरावत भी अभिषेक किया, तब गोविंद कुंड बना, तब उनको गोविंद का नामकरण तब हुआ। उसके पहले गोविंद का नामकरण नहीं था, नाम गोविंद का नामकरण तभी से हुआ, कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा। यानी वो लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ माधुर्य में लीला प्रारंभ किया। वास्तविकता में गोवर्धन के समय सारे गोपियां, सारे गोप सब लोग साथ में थे। सबसे पहला कृष्ण का जो केवल दृष्टि से सारे गोपियों को हृदय में ये कामुक भावना को जागृत करने का समय ये है। तो इसलिए गोवर्धन लीला एक प्रकार का टर्निंग पॉइंट है कृष्ण लीला में। इसलिए कुंती महारानी खाली गोविंदाया ये शब्द के द्वारा उन्हें संबोधित किया, सारे माधुर्य में भक्तों को गोपियों को आपने पूर्ण तरीके से आनंद में डुबाया। तो वैसे तो नमो नमः, तो नमो नमः मतलब क्या है, मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। तो कुंती महारानी पहली उन्होंने कहा नमस्ते शुरू किया, अभी नमो नमः दो बार क्यों उच्चारण कर रही है, आनंद में उच्चारण कर रही है। ऐसा उन्होंने प्रणाम नहीं किया लेकिन बोल रही है, आनंद में बोल रही है कि नमो नमः मैं प्रणाम करती हूँ। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के ये जो नाम संकीर्तन के द्वारा कुंती महारानी अपने सारे प्रकार के जो तत्वों को वर्णन कर रहे हैं, भगवान के जो गुणों को वर्णन कर रही है, गुणों में सबसे पहला गुण है भगवान श्री कृष्ण का कि वो सारे भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, खास करके गोविंद जो जिनके इंद्रियों को, गो मतलब इंद्रियां, विंद का अर्थ है कि आनंद प्रदान करना, वो सबको आनंद प्रदान करते हैं। और कुंती महारानी ये भी कहती हैं कि आपने मुझे भी आनंद प्रदान किया है, यू हैव टेकन यू हैव गिवन मी प्लेजर ऑल्सो, आप इस प्रकार की लीला प्रदर्शन करने के द्वारा। बाद में नेक्स्ट श्लोक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कुंती महारानी कहती हैं आपने अनेकों अनेकों लोगों को आनंद प्रदान किया, जिनका वर्णन मैंने किया, नंद वसुदेव देवकी नंद महाराज यशोदा सारे गोपियों को किया, उनके साथ साथ में मुझे भी आपने आनंद प्रदान किया, क्योंकि आपका एकमात्र कार्य है लोगों को भक्तों को आनंद प्रदान करना। आप प्रकट होते हो, प्रकट होने का कारण ही है लोगों को आनंद प्रदान करना। आपने मेरे ऊपर भी बड़ा सौभाग्य को दिया ताकि मैं आपकी लीलाओं को प्रत्यक्ष रूप में देखी और देख पा रही हूँ, और आपका ये जो सुंदर रूप है मैं देख पा रही हूँ, और कौन सा रूप है उस रूप का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। तो भगवान का रूप का वर्णन कर रही है। तो भगवान का रूप का वर्णन करते हुए सबसे पहला कहती है नमः पंकजनाभाय। नमः पंकजनाभाय, मैं प्रणाम करती हूँ आपके नाभि को। नाभि को प्रणाम करने का अर्थ क्या है? नाभि को प्रणाम करने का अर्थ है कि आप जो है आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, वो कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा से सारा जगत प्रकट हुआ। दूसरे शब्दों में आपका नाभि जो है सबका आधार है, सारा जगत का आधार है। इट इज़ द रिसाइडिंग प्लेस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो आप सभी जीवों का, सारे लोगों का आधार हैं। तो मेरा जीवन का भी आप एकमात्र आधार हो। यू आर माई ओनली रिसॉर्ट। इस प्रकार श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं पंकजनाभाय शब्द के द्वारा कुंती महारानी भगवान की आधार शक्ति, यानी सारे लोगों की आधार है, भक्तों का जीवन का आधार है, इस गुण को प्रकाशित कर रही है। बाद में दूसरी बात, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने। तो भगवान माला को धारण किए, कौन से माला को? कमल की माला को धारण किए। तो ये इसका अर्थ क्या है? श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं नमः पंकज मालिने शब्द का ये अर्थ है कि भगवान सबको धारण करते हैं। किसको धारण करते हैं? ऐश्वर्यों को धारण करते हैं, माधुरी को धारण करते हैं, जैसे माला को धारण किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो वैसे ही भक्तों की जो प्रेम है उसको स्वीकार करते हैं। ही एक्सेप्ट्स। भक्तों का जीवन है भगवान, आधार है भगवान, और साथ साथ में भक्तों का ये जीवन में भक्ति होता है उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं, यानी रेसिप्रोकेट करते हैं। इस जगत में हम देखते हैं कि लोगों के साथ आप कुछ भी करो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो सामने से वो आपके साथ रेसिप्रोकेशन नहीं रहेगा। सब काम खत्म होने के बाद आपको भूल जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एकमात्र है। आप अगर थोड़ा सा भी कुछ किया हो कभी नहीं भूलते, ही नेवर फॉरगेट। आपने जीवन भर बच्चे को बड़ा पालन किया, सब कुछ किया, इतना सब कुछ करने के बाद भी बच्चा जो है यही बोलेगा पापा मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, क्या किया? पूरा दिन व्यक्ति जो है पूरा मार्केट जाता है, नौकरी करता है, पूरा घर को देखभाल करता है, सब कर रहा है, पर थोड़ी सी एक कमी हो गया तो तुरंत क्या बोलेंगे? पता नहीं, ये तो फालतू चीज़ है, एक तो फालतू कुछ नहीं, एक कमी। लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा है, अरे एक गुण देख लेते हैं तो उसको कभी नहीं भूलते हैं। ये भौतिक जगत का स्वभाव है। आप कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना, अगर एक दिन कुछ गड़बड़ किया ना, लोग वही बोलेंगे गड़बड़ किया। मान लो आप 15 साल से सेवा कर रहे हो, एक गलती हो गया तो पूरा चर्चा हो जाएगा, अरे इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, 15 साल में क्या क्या महान काम किया वो कोई नहीं देखता है। इतना दिन तक क्या कोई नहीं देखता, एक पकड़ के। ये जगत का स्वभाव है, इट इज बाय नेचर। लेकिन कृष्ण का ऐसा स्वभाव नहीं है। कृष्ण क्या है? वो ही रेसिप्रोकेट्स। माला का अर्थ है, माला धारण करने का अर्थ है, भक्तों को अपना आभूषण के रूप में धारण करते हैं, ऐसा श्रीपाद वल्लभाचार्य का कहना है। चौथी बात क्या है? तीसरी बात क्या है? नमः पंकज नेत्राय। नेत्राय, नेत्राय करते हैं अपने भगवान की जो आंख है वो कमल के बराबर है। कमल क्या होता है? विकसित हो जाते हैं, विकसित होता है। वैसे ही भक्तों की भक्ति को देख के भगवान के जो कमल जैसे आंख है वो विकसित हो जाता है। इतना हद तक कि भक्तों का जो भक्ति है उनको देख के भगवान जो है अति आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ही बिकम्स वेरी हैप्पी। केवल भगवान लोग भक्तों को आनंद ही नहीं देते, और भक्तों का भक्ति को देख के स्वयं भी आनंदित हो जाते हैं। और नमस्ते पंकजांग्रे, पंकजांग्रे, अंग्रे मतलब क्या है? चरण। भगवान का चरण जो है कमल के बराबर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है सारे लोगों का गंतव्य जो है भगवान श्री कृष्ण है। सारे लोगों का भगवान गंतव्य भगवान श्री कृष्ण के चरण है। चरण का अर्थ है उनकी सेवा, जो अति दयालु होके लोगों को, भक्तों को सेवा का मौका प्रदान करते हैं। ये भगवान का उदारता है। ये जो उदारता की भाव जो है भगवान कुंती महारानी पंकजांग्रे शब्द के द्वारा सूचित कर रही है। अभी श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इन्हीं बातों को लिखते हुए कहते हैं, कुंती महारानी शर्मा रही थी। वैसे तो भगवान का दर्शन करना चाहिए, कैसे दर्शन करना चाहिए, चरण से करना चाहिए आंखों तक, लेकिन कुंती महारानी ने सबसे पहला किसका दर्शन किया, नाभि का किया, क्योंकि कुंती महारानी शर्मा रही थी। अगर मैं करूँगी चरण का दर्शन करूँगी, चरण का वर्णन करूँगी, कृष्ण थोड़ा उनको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बुआ तुम क्या कर रही हो, ऐसे सोचेंगे है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। उनको थोड़ा असमंजस में नहीं डालने के लिए कुंती महारानी ने क्या किया, पहले नाभि का दर्शन किया, नाभि का दर्शन करने के बाद, नाभि का वर्णन करने के बाद गले में जो माला है यानी मुखारंज का दर्शन किया, और गले को दर्शन किया, छाती सबको दर्शन किया, बाद में मुखारंज का दर्शन किया, बाद में अंत में चरण का दर्शन किया। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अर्च विग्रह जो है भगवान का एक रूप है, तो अर्च विग्रह जो है उनमें भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, हम भक्तों को सेवा करने का मौका प्रदान करते हैं, इसलिए अर्च विग्रह का रूप धारण करते हैं। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं कि सॉरी प्रभुपाद जी कहते हैं अपने इस तात्पर्य में, अर्च विग्रह का दर्शन करने की विधि है, सबसे पहला चरण का दर्शन करना चाहिए, बाद में नाभि का, बाद में छाती का और गले का, बाद में मुखारविंद का दर्शन करना चाहिए, बाद में मुखारविंद में भी उनके जो आँख हैं, ब्रुकुटी हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। वैसे आप सबको इसके बारे में मालूम है, भागवतम का भी पूरा वर्णन कृष्ण स्वरूपम, कृष्ण के शरीर के बराबर तुलना किया गया है। और जैसे जैसे हम भागवतम के पहले दो स्कंध हैं भगवान के चरण हैं, और तीसरा चौथा स्कंध जांग है, इस प्रकार भागवत के एक एक संदों को पढ़ते जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक रूप का दर्शन होगा। अभी तो प्रश्न होता है, इधर भगवान का रूप का वर्णन हुआ है, लेकिन रूप जो है गुण कैसे वर्णन किया गया है, रूप जो है उसका गुण के रूप में कैसे बताया गया है। भगवान का रूप और गुण में बहुत गहरा संबंध है, इट इज वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन द क्वालिटीज एंड द फॉर्म। जैसे जैसे भगवान का गुण होता है, उस प्रकार का रूप को प्रकाश, उस प्रकार का रूप प्रकट होता है। इसलिए जब भक्त भगवान का रूप देखते हैं, वो आस्वादन रूप के ज्यादा, रूप से ज्यादा गुणों का आस्वादन करते हैं। जैसे नरसिंह जी का दर्शन किया, तो नरसिंह जी का दर्शन करके जो उग्र रूप है, लेकिन वो रूप उग्र क्यों है, क्योंकि उग्र भाव है, भाव मतलब गुण, तो गुण के ऊपर आधारित रूप है। इसलिए श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं ये जो श्लोक है, दो श्लोक यानी ये वाला और पहले वाला श्लोक जो है, भले ही आपको रूप माधुरी है, लेकिन अस्तित्व में गुण माधुरी है, गुण विशेष का वर्णन है। अभी आगे की श्लोक है जो कुंती महारानी भगवान की लीलाओं को वर्णन करती हैं, तीन श्लोकों में 23, 24, 25, ये आठवां अध्याय का पहला स्कंद का। तो सबसे पहला, यथा ऋषिकेश कलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिरम सुतार्पिता विमोचिता हम सात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्घणात्। कुंती महारानी भगवान की लीलाओं को वर्णन कर रही है, क्योंकि आप प्रकट होते हैं, प्रकट होने के बाद क्या करते हैं, भगवान लीला करते हैं, लीला करने के द्वारा सबको आनंद प्रदान करते हैं, ऐसा सब कुछ वर्णन हो गया, लेकिन कैसे आनंद प्रदान करते हैं, उसका उदाहरण क्या है, उदाहरण ये है, यथा जिस प्रकार ऋषिकेश, आप ऋषिकेश, ऋषिकेश का अर्थ क्या है, ऋषिकेश का अर्थ है जो इंद्रियों के नियंता है। हाँ, कुंती महारानी भगवान से निवेदन करती है, हे भगवान, आपने बहुत सारे लोगों को रक्षा किया, देवकी को रक्षा किया, पांडवों को रक्षा किया, वसुदेव को रक्षा किया, अभी आपने किसको रक्षा किया, उत्तरा को रक्षा किया, और पांडवों को रक्षा किया, और मुझे रक्षा किया। जैसे आपने देवकी को रक्षा किया, मुझे भी रक्षा किया आपने। देवकी का स्मरण करती है, हे भगवान मैं बहुत धन्य हूं, आपने जिस प्रकार देवकी को रक्षा करके माँ, देवकी को रक्षा क्यों किया, आपको देवकी आपकी माँ है, और आपने मुझे भी रक्षा किया, तो आपने मुझे माँ के रूप में स्वीकार किया। जैसे एक भतीजा बुआ को जब माँ बोलता है ना, बुआ बहुत आनंदित हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है, हमेशा चाहती है कि जो व्यवहार वो बच्चा अपनी माँ से करता है, वो बुआ चाहती है कि वही व्यवहार मेरे से भी करें। देखिए कृष्ण का भी इस प्रकार है, कुंती महारानी के अंदर कितनी लालसा होगी, देखिए जो व्यवहार हे कृष्ण तुमने देवकी के साथ किया वैसे मेरे साथ करोगे। अभी अपने आप का अपना जीवन को सार्थक मानती है देवकी और कहती है कि जय आपने मुझे माँ के रूप में देखते हुए माँ करके स्वीकार करके जैसे देवकी को रक्षा किया वैसे मुझे भी रक्षा किया। इस भाव को लेकर श्लोक को कहती है हे कृष्ण मेरा हृदय को जानते हो, और केवल जानते ही नहीं हो मेरा हृदय का नियंत्रक बनो, मेरे सारे इंद्रियों का नियंत्रक बनो। यथा ऋषिकेश हो ऋषिकेश, अभी मैं कुछ आपकी लीलाओं को वर्णन करना चाहती हूँ। ऋषिकेश खलेन देवकी देवकी खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार्पिता सुचार्पिता, आपने छुड़ाया देवकी को किससे, कंस का बंधन से। कंस ने जेल में डाला था देवकी वसुदेव को, उन्होंने आपने उनको छुड़ाया, देवकी और वसुदेव को छुड़ाया। लेकिन बात यह है, देवकी कहती है कुछ विशेषता जरूर है, विशेषता यह है कि आपने देवकी के बच्चों को बचाए नहीं, मेरे ऊपर ऐसा एक तरीके से देखा जाए तो विशेष कृपा है। क्या विशेषता है, आपने देवकी के बच्चों को मरने दिया लेकिन आपने मेरे बच्चों को मरने नहीं दिया, जीवित रखा, केवल जीवित ही नहीं रखा, क्या कराया मेरे बच्चों को, विजयी कराया। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए देवकी से ज्यादा मेरे ऊपर आपका दृष्टि है। लेकिन दूसरी बात यह है विमोचिता हंस चात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर् विपद्घणात्। देवकी का बात क्या है, एक ही विपद, देवकी का विपद एक ही था, क्या था, कंस के द्वारा उनको तकलीफ था, लेकिन मेरा विपद कितनी थी, कितने सारे दुश्मन हुए, कितने सारे तकलीफें आई एक के बाद एक के बाद एक, आपने मुहूर्त बार बार मेरे तकलीफों को आपने दूर किया। दो विशेषताएं कहती हैं, सबसे पहला क्या है, कृष्ण आपने देवकी के बच्चों को मरने दिया और मेरे बच्चों को आपने जीवित ही नहीं रखा बल्कि विजयी बनाया, तो इसमें मेरी विशेषता है, आपका कृपा मेरे ऊपर ज्यादा है लगता है। दूसरी बात, देवकी का क्या था, एक ही विपद था, उससे एक ही विपद से बचाए, कंस ने जेल में डाला था, जाके खोल दिया और बाहर निकल दिया बस, और बाद में कृष्ण जाके देवकी के गोद में बैठे, बाद में कुछ दिन रहे, बाद में चले गए, ये तो आप लीला में जानते हो। लेकिन कुंती महारानी कहती हैं आप हमारे साथ रहे, जब देवकी को खाली बंधन से मुक्त किया लेकिन हमारे प्रत्येक समस्या को आपने स्वयं आके समाधान किया, इसलिए मुहुर मतलब बार बार विपद घणात। मैं समझती हूं कृष्ण, क्यों मालूम है आपने मेरे ऊपर ऐसा क्यों किया, क्योंकि त्वयैव नाथेन, क्योंकि मेरे लिए आपके अलावा कोई नाथ नहीं था, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपके अलावा मेरे लिए कोई और नाथ नहीं था, इसलिए परम सौभाग्य मुझे मिला। लेकिन देवकी को अपने पति जीवित है, वसुदेव जीवित था ना, इसलिए कृष्ण सोचे होंगे ठीक है उनका नाथ बचाएगा, ही विल सेव, इसलिए मैं अपनी जो पति को खोने का जो चीज है, जो ये जो बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है एक स्त्री के जीवन में, उसको मैं अपना सौभाग्य समझती हूं, क्योंकि उसके वजह से आपका कृपा दृष्टि मेरे ऊपर ज्यादा रहा, क्योंकि मेरे लिए आपके अलावा कोई नाथ नहीं बचा, नान्यत, कोई अल्टरनेटिव नहीं है मुझे। तो निश्चित रूप में आपका जो कृपा उसी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा रहता है जो ये भाव में रहता है, क्या भाव में रहता है, मेरी रक्षा के लिए कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। अगर कोई ऑल्टरनेट ढूंढ के रखता है, अभी कृष्ण अगर ये नहीं करेंगे वो ये बैंक बैलेंस बचा हुआ ये रक्षा करेगा वो रक्षा करेगा, इधर थोड़ा सा सिक्योरिटी रखता हूं, कृष्ण बोलेंगे ठीक है सब से जब हाथ उठा के आओगे तब मेरे पास आना, तब मैं करूंगा, जब तक तुम्हारा विश्वास अन्य चीजों में है तब तक खुलो मैं रहूंगा। तब देवकी कहते विमोचिता हम चात्मजा विभो त्वयैव नाथे न, आप ही एकमात्र नाथ हो, इसके वजह से मैं जानती हूं कि मेरे ऊपर आपका विशेष कृपा है, लेकिन फिर भी बात यह है कि आप देवकी के पुत्र बने, आप देवकी को मां करके पुकार सकते हो, लेकिन आप मुझे माँ करके पुकारा नहीं, इसलिए मैं समझती हूँ देवकी ज़्यादा मेरे से सौभाग्यवान हैं। ऐसे स्त्रियों में ज़्यादा रहता है कि कंपैरेटिव नेचर बहुत रहता है कि नहीं इधर भी चले ट्रांसेंडेंटल कंपैरेटिव नेचर है कि नहीं, ऐसा कंपैरिजन कर रही है। और भी अन्य श्लोकों में आगे श्लोकों में मुहूर् विपद घणात, बहुत सारे विपद आए, विपदों का लिस्ट बताती है अगले श्लोक दो श्लोकों में, व्हाट आर द डिफिकल्टी शी फेस्ड पांडवों के साथ, उसका चर्चा हम अगले कल हम करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। कुंती महाराणी की, मंत्राश्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।